नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जो जितना चरित्र में स्वच्छ होता है उसके ऊपर जब तक आफत नहीं आए तब तक उसका निखार नहीं होता, लोग जानते नहीं कैसा चरित्र है। सोने को जब तक तपाते नहीं है तब तक सुनार को पता नहीं चलता है कि सोना खोटा है कि सोना असली है। सोने की पहचान के लिए उसको तपाना जरूरी है। इसी प्रकार से पांडवों को और द्रौपदी को जितना तपाया गया उनका चरित्र उतना ही निखरता गया, साफ होता गया। लोग कहते हैं देखो द्रौपदी पर कितनी कितनी आंच आई, कीचक ने भरी सभा में उसके लात मारी, पांडव लोग देख रहे हैं। ये भी उस अपमान से कम अपमान नहीं था। पतियों के सामने और पति देख रहे हैं और छिपे हुए भी हैं, क्या करें। ऐसी स्थिति में कितना धैर्य, और द्रौपदी ने कितने अपने चरित्र की सुरक्षा की है। ऐसी आफत यदि द्रौपदी पर अथवा पांडवों पर नहीं आती तो फिर पांडवों का चरित्र कैसा परम पवित्र था, द्रौपदी कितनी सती साध्वी थी, कैसा आदर्श था, इसका ज्ञान ही कैसे होता। इसलिए ऐसे प्रसंगों पर यह नहीं देखना चाहिए कि देखो इतने अच्छे थे इन पर संकट क्यों आया, ये संसार को अच्छा बनाने के लिए संकट आया है। दूसरे आज सीता जी पर संकट आया तो युधिष्ठिर जी ने सुना ना, अरे और भी लोग थे, राजा नल और दमयंती की कथा सुनी ना, उनको लगा रे और भी लोग कोई इस मार्ग से निकले हैं। दुखी आदमी किसी दुखी की कथा सुनता है तो उसको ऐसा लगता है कि कई लोग इस मार्ग से निकले, अपने को अकेले पर ही दुख नहीं आया है। तो इधर क्या हुआ था कि त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा ने मत्स्य देश के राजा विराट पर आक्रमण कर दिया कि उनकी कौवे ले जाने लगा। अब गाय कौन ले जाने दे, तो लाखों गायें थी वो घेर के ले जाने लगे, तो सेना भेजी, भीमसेन वगैरह गए खदेड़ करके ले आए सब, और सुशर्मा को भीमसेन ने उठा उठा के पटक करके और युधिष्ठिर के चरणों में रख दिया कि तू दास है, दास बोलना आज के बाद मैं दास हूं। युधिष्ठिर जी ने कहा छोड़ो, अपने को ऐसा नहीं कहलवाना चाहिए, कर्मों से तो दास हो गया भीम, कहला करके बिचारे को क्यों इतनी बेइज्जती करो, छोड़ दिया। और नगर के अंदर ये घोषणा हो गई कि अपने नगर की विराट की आज जीत हो गई, क्योंकि विराट की जीत पहले भी होती थी, पहले कीचक के कारण से होती थी, और कीचक जब मारा गया तो उस राजा ने देखा कि आज हमारा बदला लेने का समय, कीचक तो मर गया, कीचक से भी बड़ा बलवान भीमसेन हुआ था, अभी पता नहीं है भीमसेन ने क्या। एक तरफ तो ये बात हुई, अब दूसरी तरफ कौरवों की तरफ से भी आक्रमण हो रहा है, वो कथा चलाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन जब मत्स्यराज विराट गौओं को छुड़ाने के लिए त्रिगर्त सेना की ओर गए तो दुर्योधन ने भी मौका देखकर अपने मंत्रियों सहित विराट नगर पर चढ़ाई कर दी। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचारी, अश्वत्थामा, शकुनी, दुशासन, विवंशति, विकर्ण, चित्रसेन, दुर्मुख, दुश्शल और भी अनेकों महारथी दुर्योधन के साथ थे। ये सब कौरव वीर विराट की 60,000 गौवों को सब ओर से रथों की पंक्ति से रोक कर ले जा रहे थे। जब उनको रोका गया तो वे मारपीट करने लगे और इतने बड़े महारथियों के सामने बेचारे ग्वालिये क्या करते, ठहर नहीं सके और उनकी मार खा कर जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब ग्वालियों का जो सरदार था, ग्वालियों का सरदार रथ पर चढ़कर अत्यंत दीन की तरह रोता बिलखता नगर में आया, सीधा राजमहल के दरबार में पहुंचा और रथ से उतरकर भीतर चला गया। राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा और रथ से उतरकर भीतर चला गया। वहां उसे विराट का पुत्र, जिसको उत्तर भी बोलते हैं और भूमिंजय वो भी बोलते हैं, वो मिला। ग्वालियर के सरदार ने उसको सारा समाचार सुना दिया और कहा, राजकुमार, आपकी 60,000 गवों को कौरव ले जा रहे हैं, आप राज्य के बड़े हित चिंतक हैं, इस समय अपनी अनुपस्थिति में महाराज आपको ही यहां का प्रबंध सौंप गए हैं, क्योंकि महाराज विराट तो अभी मत्स्यनरे से युद्ध कर रहे हैं और सभा में वे आपकी प्रशंसा भी बहुत बार करते हैं कि मेरा पुत्र उत्तर बड़ा कुलदीपक है, मेरे अनुरूप है, शूरवीर है, तो आज शूरवीरता दिखाने का मौका है, अतः इस समय आप तुरंत ही गवों को छुड़ाने के लिए जाइए और महाराज के कथन को सत्य करके दिखाइए। राजकुमार अंतःपुर में स्त्रियों के बीच बैठा हुआ था, जब उससे ग्वालियर ने ये बात कही तो वह अपनी बड़ाई करता हुआ कहने लगा, भाई आज मैं जिस और गऊ में गई है उधर अवश्य जाऊंगा, मेरा धनुष तो काफी मजबूत है किंतु किसी ऐसे सारथी की आवश्यकता है जो घोड़ा चलाने में बहुत निपुण हो। इस समय कोई ऐसा मेरी निगाह में सारथी नहीं है जो मेरा रथ हाँक सके। तो भाई गोपराज, तुम शीघ्र ही मेरे लिए कोई सारथी की तलाश करो, फिर देखना मेरी वीरता। इंद्र जैसे दानों को भयभीत कर देते हैं, उसी प्रकार मैं दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, कृपाचारी, अश्वत्थामा, इन सभी महान धुरंधरों के छक्के छुड़ाकर एक क्षण में अपनी गवों को लौटा लाऊंगा। उत्तर बोलता है, डींग मारता है वो स्त्रियों के बीच, जिस समय में युद्ध में मेरा पराक्रम देखेंगे उस समय उन्हें यही कहना पड़ेगा कि यह साक्षात प्रथा पुत्र अर्जुन ही तो हमें नहीं तंग कर रहा है, ऐसा उनको बहम होगा कि अर्जुन है। जब राजपुत्र ने स्त्रियों के बीच में बार बार अर्जुन का नाम लिया तो द्रौपदी से नहीं रहा गया, वह स्त्रियों में से उठकर उत्तर के पास आई और कहने लगी, यह जो हाथी के समान विशाल का है और एक दर्शनीय युवक वृहन्नला जो आपके यहां विख्यात है, पहले अर्जुन का सारथी रह चुका है, यदि यह आपका सारथी बन जाए तो आप निश्चय ही सब कौरवों को जीतकर अपने गौवे लौटा लाएंगे। शैलेन्द्र के ऐसा कहने पर उसने अपनी बहन उत्तरा से कहा, हे बहन, तुम जाओ और बृहन्नला को यहां लेवा लाओ। भाई के कहने से उत्तरा तुरंत नृत्यशाला में पहुंची। बृहन्नला ने अपनी सखी राजकुमारी उत्तरा को देखकर पूछा, कहो राजकन्ये, इस समय अकस्मात बड़ी हड़बड़ाहट के साथ कैसे आना हुआ? तब राजकन्या ने बड़ी विनय दिखाते हुए कहा, वृहन्नले, कौरव लोग हमारे राष्ट्र की गऊओं को ले जा रहे हैं। उन्हें जीतने के लिए मेरा भाई धनुष धारण करने के लिए तैयार हो रहा है। उनको कोई सारथी नहीं मिला है। तुम मेरे भाई के सारथी बन जाओ और कौरव लोग गऊओं को दूर लेकर जाए उससे पहले ही रथ के पास उसको पहुंचा दो। फिर तो मेरा भाई बड़ा वीर है और कौरवों से युद्ध करने में बड़ा समर्थ है और उत्साही भी है। हमने सुना है कि आपने अर्जुन का सारथ्य किया है, सारथीपना किया है। मुस्कुराया, अर्जुन मुस्कुराया। कुमारी उत्तरा के इस प्रकार कहने पर अर्जुन मुस्कुराए उठे और राजकुमार उत्तर के पास आए। बृहन्नला को दूर से ही आते देखकर राजकुमार ने कहा, बृहन्नले, जिस समय मैं गवों को बचाने के लिए कौरवों के साथ युद्ध करूं, उस समय तुम मेरे घोड़ों को उसी प्रकार अपने काबू में रखना जिस प्रकार पहले तुम अर्जुन के रथ में घोड़ों को काबू में रखते थे, क्योंकि मैंने सुना है पहले तुम अर्जुन के प्रिय सारथी थे और तुम्हारी सहायता से पांडव प्रवर अर्जुन ने सारी पृथ्वी को जीता था। सच बृहन्नले, अर्जुन का नाम सुनते ही मेरे मन में बड़ा जोश आता है। वो कैसा वीर था, और देखो बृहन्नले, ऐसा परम वीर होकर के भी अपना राज्य खो बैठा, इसे क्या कहें। चलो अभी ये बात करने का समय नहीं है, तुम मेरे रथ को तैयार करो। उसके पश्चात उत्तर ने सूर्य के समान चमकता हुआ बढ़िया कवच धारण किया तथा अपने रथ पर सिंह की ध्वजा लगाकर बृहन्नला को सारथी बनाया। फिर बहुमूल्य धनुष और बहुत से उत्तम उत्तम बाण लेकर उसने युद्ध के लिए कूच किया। इस समय बृहन्नला की सखी उत्तरा और दूसरी कन्याओं ने कहा, बृहन्नले, तुम संग्राम भूमि में आए हुए भीष्म द्रोण आदि कौरवों को जीतकर हमारी गुड़ियों के लिए रंग बिरंगे महीन और कोमल वस्त्र लाना, इस बात को याद रखना। इस पर अर्जुन ने बड़े लटके के साथ हंसकर कहा, यदि ये राजकुमार उत्तर रणभूमि में इन महारथियों को परास्त कर देंगे तो मैं अवश्य उनके दिव्य और सुंदर वस्त्र लाकर दे दूंगी। अर्जुन बोलता है, दे दूंगी। अब राजकुमार उत्तर राजधानी से निकलकर बाहर आया, अपने सारथी से बोला, तुम जिधर कौरव लोग गए उधर ही रथ को ले चलो। यहां जो कौरव लोग विजय की आशा से आकर इकट्ठे हुए, उन सबको मैं जीतूंगा और उनसे गवें छुड़ाऊंगा और बहुत जल्दी घर में विजयी होकर लौटूंगा, फिर मेरा बड़ा स्वागत होगा। तब पांडव नंदन अर्जुन ने उत्तर के उत्तम जाति के घोड़ों की लगाम ढीली कर दी। अर्जुन के हांकने से वे हवा में बात करने लगे, घोड़े सर सर चलने लगे और ऐसे दिखाई देने लगे मानो ही आकाश में उड़ने वाले हैं, आकाश में उड़ने वाले हैं। थोड़ी दूर जाने पर उत्तर और अर्जुन को महाबली कौरवों की विशाल सेना दिखाई दी। वह विशाल वाहिनी हाथी घोड़े रथों से भरी हुई, कर्ण दुर्योधन कृपाचार्य भीष्म और अश्वत्थामा के सहित महान धुरंधर द्रोण उसकी रक्षा कर रहे थे। अर्जुन बड़ी चतुराई से सबको देख रहे थे। ये देखकर उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए और उसने भय से व्याकुल होकर अर्जुन से कहा, बृहन्नले, तुम क्या देख रहे हो? ऐसे एकटक होकर देखने से क्या होगा? मेरा मन घबरा रहा है, ये मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे मारतियों से लोहा लेऊं? नहीं नहीं, ये देखो अर्जुन, मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। इस सेना में तो अगणित वीर हैं, ये तो बड़ी विकट सेना है। ब्रियन्नले, देवता लोग भी इसका सामना नहीं कर सकते। मैं तो अभी बालक हूं, शस्त्र का मुझे अभ्यास भी नहीं है, और मैं तो सेना लेकर भी नहीं आया। मैं अकेला इस शस्त्र विद्या में पारगामी महावीरों से कैसे लड़ूंगा? ब्रियन्नले, जल्दी करो, तुम ये लौट चलो। ब्रियन्नले, ये मेरी आज्ञा है, तुम सारथी हो, मेरी आज्ञा मानो, चलो ब्रियन्नले, जल्दी चलो। ब्रियन्नला ने कहा, राजकुमार धैर्य रखो, तुमने अंतपुर में स्त्री पुरुषों के सामने अपने पुरुषार्थ की बड़ी प्रशंसा की थी, और तुम शत्रु से लड़ने के लिए घर से निकले हो, फिर अब डरते क्या हो? एक मरना ही तो है, तो मरना है तो मरना है, आओ युद्ध करो। यदि तुम इन्हें परास्त किए बिना घर लौटोगे तो वे सब मिलकर तुम्हारी बड़ी हंसी करेंगे, और वहां जो सैरेन्द्री है उसने जो मेरा नाम लेकर तुमको मुझे सारथी बनाने के लिए कहा था, इसलिए मैं तो वापस नहीं लौटता, क्योंकि मेरे रथ में अर्जुन बैठते थे, उनको कभी मैंने ऐसे रण से विमुख होते हुए नहीं देखा। मैंने तो विजयी अर्जुन को सदा युद्ध के अंदर झूझते हुए देखा है, और तेरा सारथी बनूं और तू वापस लौटाने के लिए बोलता है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए अब बिना गोए लिए नगर की ओर जाना मेरा काम नहीं है, मैं तो रथ को आगे बढ़ाऊंगी। उत्तर बोला ब्रियन्नले, देखो कौरव लोग मत्स्यराज की बहुत सी गोवे ले जा रहे हैं, स्त्री पुरुष मेरी हंसी करें तो करते रहे, लेकिन मेरा जीवन तो बच जाएगा। अब ये युद्ध करना मेरे बस की बात नहीं है, और मैं कह दूंगा कि मैं युद्ध नहीं कर सका, इसमें लज्जा की क्या बात है? ऐसा कहकर राजकुमार उत्तर हां ऐसा राजकुमार ने कहा तो ब्रियन्नला ने फिर भी रथ को आगे बढ़ाया और कहा, ये ब्रियन्नला रथ को पीछे नहीं मोड़ सकती, कभी मोड़ा ही नहीं, अभ्यास ही नहीं, अतः मेरा रथ तो आगे जाएगा। ये सुनकर राजकुमार रथ से कूद पड़ा, सारी मान मर्यादा को तिलांजलि दे दिया, धनुष बाण फेंक दिया। ब्रियन्नला ने कहा, सूरवीरों की दृष्टि में युद्ध स्थल में भागना क्षत्रियों का धर्म है ही नहीं, उत्तर क्या करते हो? क्षत्रिय के लिए युद्ध में मरना अच्छा है, डरकर पीठ दिखाना अच्छा नहीं है। बैठो रथ में। नहीं, मैं नहीं बैठता, मैं भागूंगा, मुझे मेरी जान प्यारी है, मैं इस युद्ध में नहीं रह सकता। ब्रियन्नले, तू वो मुझे नगर पहुंचा दे। ऐसा कहकर कुंती नंदन अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और भागते हुए राजकुमार के पीछे दौड़े, और बड़े तेजी से सोई कदम पर उसके जाकर बाल पकड़ लिए। अर्जुन द्वारा पकड़ लिए जाने पर उत्तर कायरों की तरह दीन होकर जोर जोर से रोने लगा, हे कल्याणी, हे ब्रियन्नले, सुनो, तुम जल्दी रथ लौटा ले चलो। देखो, जिंदगी रहेगी तो अच्छे दिन भी देखने को मिल जाएंगे। देखो, मैं अब ज्यादा देर यहां नहीं रह सकता। इस प्रकार जब वो बहुत घबराया और अन्याय विनय करने लगा, किंतु अर्जुन हंसते हंसते उसको उठाकर रथ के ले जाकर अंदर बैठा दिया और कहने लगे, राजकुमार, यदि शत्रुओं से युद्ध करने की हिम्मत नहीं है तो लो, तुम घोड़े की राज संभालो, मैं युद्ध करता हूं, तुम इस रथियों की सेना में ले चलो, डरना मत, मैं तो अपने बाहुबल से तुम्हारी रक्षा करूंगा, और तुम डरते क्या हो? आखिर हो तो क्षत्रिय के ही बालक ना, फिर शत्रुओं के सामने आकर घबराना। देखो, मैं इस दुर्जय सेना में घुसकर कौरवों से लड़ूंगा और तुम्हारी गौवें छुड़ाकर लाऊंगा, तुम मेरा सारथी का काम करो। ब्रियन वे उत्तरासुर ने कहा कि ये बृहन्नला स्त्रीवाचक शब्द बोलने वाली आज पुरुषवाचक शब्द कैसे बोल रही है। कहा बृहन्नले तुम आज भाषा को कैसे बदल दिए। अर्जुन ने कहा नहीं, युद्ध के अंदर सब पुरुष होते हैं, स्त्री भी पुरुष हो जाती है, अपने पौरुष को याद रखो, डरना नहीं, बैठो रथ में, बैठे रहना। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मे जय बहुत ध्यान से सुनना, जब भीष्म द्रोण आदि प्रधान प्रधान कौरव महारथियों ने उस नपुंसक वेशधारी पुरुष को उत्तर को रथ में चढ़ाकर समी वृक्ष की ओर जाते देखा तो उन्हें शक हुआ कि शायद ही अर्जुन हो सकता है। सबके मन में डर व्याप्त गया, डर हो गया कौरवों की सेना में। तब शास्त्र विद्या विशारद द्रोणाचार्य ने पितामह भीष्म से कहा गंगा पुत्र, ये जो स्त्री वेशधारी दिखाई देता है ये इंद्र का पुत्र कपिध्वज अर्जुन जान पड़ता है। इसके चाल ढाल नेत्र और भगते हुए उत्तर को वापिस रथ में बैठाना और जिस इशारे से वो उसको धमका रहा था ये लटके तो केवल अर्जुन के ही हो सकते हैं। ये अवश्य ही हमें युद्ध में जीतकर गौवे ले जाएगा। इस सेना में मुझे तो इसका सामना करने वाला कोई भी योद्धा नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमने सुना है हिमालय पर तपस्या करते हुए अर्जुन ने किरात वेशधारी भगवान शंकर को भी युद्ध करके प्रसन्न कर लिया था। इस पर बीच में कर्ण बोला, देखो बड़े आदमियों की बातें होती हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, कर्ण बीच में बोला, आचार्य आप सदा ही अर्जुन के गुणगान गाकर हमारी निंदा किया करते हो, क्या हम वीर नहीं हैं? किंतु यह मेरे और दुर्योधन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है, फिर भी आप जहां जाओ अर्जुन 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 की रट लगाए रखते हो। दुर्योधन ने कहा एक कारण, यदि यह अर्जुन है तो अपना काम बन गया ना, गुरुदेव ने अर्जुन को पहचान लिया, अब तो अपना काम बन गया, क्योंकि पहचान लिए जाने के कारण अब पांडवों को फिर 12 बरस तक वन में भटकना पड़ेगा, कारण खुशी की बात है, अपनों को गऊ से क्या लेना देना है, गऊ तो लेने का एक बहाना था, और यदि कोई दूसरा पुरुष नपुंसक के रूप में आया है तो ये पहने बाण उसको वापिस जाने नहीं देंगे। राजन सब लोग देख रहे थे। एक बार अर्जुन रथ को शमी वृक्ष के पास ले गए और उत्तर से बोले राजकुमार मेरी आज्ञा है तुम शीघ्र इस वृक्ष पर से धनुष उतारो, ये तुम्हारे धनुष मेरे बाहुबल को सहन नहीं कर सकेंगे, टूट जाएंगे। इस वृक्ष पर पांडवों के शस्त्र रखे हुए हैं, चढ़ो इस पर। यह सुनकर राजकुमार उत्तर रथ से उतर पड़ा और अर्जुन की जब आंखें और त्योरी देखी तो वो घबराता हुआ वृक्ष पर चढ़ गया। अर्जुन ने रथ पर बैठे बैठे ही फिर आज्ञा दी इन्हें झटपट उतारो, देरी मत करो, और जल्दी ही उनके ऊपर जो वस्त्र आदि लिपटे हुए उसे खोल दो। उत्तर पांडवों की इन अत्युत्तम धनुषों को लेकर नीचे उतरा और उन पर लिपटे हुए पत्तों को हटाकर उन्हें अर्जुन के आगे रखा। उत्तर को गांडीव के सिवा और 4 धनुष दिखाई दिए, उन सूर्य के समान तेजस्वी धनुषों को खोलते ही सब जगह दिव्य कांति फैल गई। तब उत्तर ने उन प्रभावपूर्ण और विशाल धनुषों को हाथ से छूकर पूछा ये किसके हैं। अर्जुन ने कहा राजकुमार इनमें यह तो अर्जुन का प्रसिद्ध गांडीव धनुष है, सुना है अर्जुन का गांडीव धनुष, यह संग्राम भूमि में शत्रुओं की सेना को क्षण भर में नष्ट कर डालता है। तीनों लोक में इसकी प्रसिद्धि है, सभी शस्त्रों से बड़ा चढ़ा है। यह अकेला ही 100,000 शस्त्रों की बराबरी वाला है। अर्जुन ने इसी के द्वारा संग्राम में देवता और मनुष्यों को परास्त किया था। देखो यह चित्र विचित्र रंगों से सुशोभित, लचकीला और गांठ आदि से रहित है। आरंभ में 1,000 वर्ष तक तो इसे ब्रह्मा जी ने धारण किया, फिर 503 वर्ष तक प्रजापति के पास रहा, गांडीव धनुष। उसके बाद 85 वर्ष तक इसे इंद्र ने धारण किया, 500 वर्ष तक चंद्रमा ने, 100 वर्ष तक वरुण ने अपने पास रखा। अब 65 वर्ष काल अर्थात 32.5 साल से ये परम दिव्य धनुष अर्जुन के पास है, उसे ये वरुण से प्राप्त हुआ है। दूसरा जो सोने से मढ़ा हुआ देवता और मनुष्यों से पूजित सुंदर पीठ वाला धनुष है, वह भीमसेन का है। शत्रु दमन भीम ने इसी से सारी दिशाएं जीती थी। तीसरा यह इंद्रगुप के चिन्ह वाला मनोहर धनुष महाराज युधिष्ठिर का है। चौथा धनुष जो सोने के बने हुए सूर्य के समान चमचमा रहा है, नकुल का है, तथा स्वर्ण के फतंगे चित्रित हैं, ये पांचवा धनुष माद्री नंदन सहदेव का है। उत्तर ने कहा, ब्रह्मनले, जिन शीघ्र पराक्रमी महात्माओं के सुंदर और सुनहले आयुध इस प्रकार चमचमा रहे हैं, वे प्रथापुत्र अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीमसेन अब कहां हैं? उनसे मिलना चाहे तो कहां मिले? वे तो बड़े महानुभाव और शत्रुओं का संहार करने वाले थे। जब से उन्होंने जुए में अपना राज्य हारा तब से उनके विषय में कुछ सुनने में नहीं आ रहा है, तथा स्त्रियों में रत्न स्वरूपा पांचाल कुमारी द्रौपदी इस समय कहां रह रही है? अर्जुन ने कहा, उत्तर अब तुम मेरी बात सुनो, ये प्रथा पुत्र अर्जुन है, ये प्रथा पुत्र अर्जुन है, तुम्हारे मुख्य सभासद महाराज के पास हरदम बैठने वाले कंक भी युधिष्ठिर हैं। उत्तर की आंखें खुल गई, सुनाओ, तुम्हारे पिता के जो रसोई पकाने वाले वो बल्लभ भीमसेन हैं, अश्व शिक्षक ग्रंथिक नकुल है, और गऊं को पालने वाला तंतिपाल सहदेव है, और जिसके लिए कीचक मारा गया वह सैरेन्द्री और कोई नहीं द्रौपदी है। उत्तर तो देखते रह गए, आप अर्जुन हैं? मैंने अर्जुन के 10 नाम सुने हैं, यदि तुम मुझे उन नामों का कारण सुना दो तो मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास हो जाएगा। तुम्हारे 10 नाम क्यों हैं बताओ? अर्जुन ने कहा, मैं सारे देशों को जीतकर उनसे धन लाकर धन ही के बीच में स्थित था, इसलिए मुझे धनंजय कहा। मैं जब संग्राम में जाता हूं तो वहां से युद्धोन्मत्त शत्रुओं को जीते बिना वापस नहीं लौटता, इसलिए मेरा नाम विजय भी है। संग्राम में युद्ध करते समय मेरे रथ में सुनहले साज वाले श्वेत अश्व जोते जाते हैं, इसलिए मैं श्वेत वाहन हूं। मैंने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दिन के समय हिमालय पर जन्म लिया था, इसलिए लोग मुझे फाल्गुन कहते हैं। पहले बड़े बड़े दानवों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने मेरे सिर पर सूर्य के समान तेजस्वी किरीट पहनाया था, इसलिए मैं किरीटी हूं। मैं युद्ध करते समय कोई विभीष भयानक कर्म नहीं करता, इसी से देवता और मनुष्यों में बीभत्सु नाम से प्रसिद्ध हूं। गांडीव को खींचने से मेरे दोनों हाथ कुशल हैं, इसलिए मुझे सभ्य साची कहते हैं। केवल दाहिने आसे नहीं, यूं यूं सब प्रकार से चारों समुद्र पर्यंत पृथ्वी में मेरे जैसा शुद्ध वर्ण दुर्लभ है, और मैं शुद्ध ही कर्म करता हूं, इसलिए मुझे लोग अर्जुन के नाम से जानते हैं। मैं दुर्लभ दुर्जय दमन करने वाला और इंद्र का पुत्र हूं, इसलिए देवता और मनुष्यों में जिष्णु नाम से विख्यात हूं। और मेरा दसवां नाम कृष्ण है, पिता का रखा हुआ है, क्योंकि मैं उज्ज्वल कृष्ण वर्ण तथा लाडला बालक होने के कारण चित्त को आकर्षित करने वाला था। ये मेरे 10 नाम है। यह सुनकर विराट पुत्र वहीं अर्जुन के चरणों में प्रणाम करने लगा और कहा, मैं भूमिंजय नाम का राजकुमार, मेरा नाम उत्तर भी है, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं कुंती पुत्र अर्जुन का दर्शन कर रहा हूं। मैंने आपको न पहचानने के कारण जो अनुचित शब्द कहे हैं उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना। आप इस सुंदर रथ में सवार होइए, मैं आपका सारथी बनूंगा और अब मुझे कोई भय नहीं है। आप जब यहां मौजूद हैं मेरा कौन क्या कर लेगा, जिस सेना में आप चलने को कहेंगे उसी में ही आपको ले चलूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, पुरुष श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे पर बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हारे लिए कोई खटकने की बात नहीं है। मैं संग्राम में तुम्हारे साथ शत्रुओं के पैर उखाड़ दूंगा, तुम्हारे सब शत्रुओं के पैर उखाड़ दूंगा, तुम शांत रहो। और इस संग्राम में शत्रुओं के साथ लड़ते हुए मैं जो भीषण कर्म करूं उसको देखते रहो। जिस समय मैं गांडीव धनुष लेकर रणभूमि में रथ पर सवार होऊंगा, उस समय शत्रुओं की सेना मुझे जीतने की बात तो छोड़कर ठहर भी नहीं सकेगी। अब तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए। उत्तर ने कहा, अब मैं इनसे नहीं डरता, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप संग्राम भूमि में भगवान श्री कृष्ण और साक्षात इंद्र के सामने भी डट सकते हैं। अब तो मुझे आपकी बड़ी सहायता मिल गई, इसलिए मैं युद्ध क्षेत्र में देवताओं से भी मुकाबला कर सकता हूं। मेरा सारा भय भाग चुका, बताइए मैं क्या करूं। पुरुष श्रेष्ठ, मैंने अपने पिताजी से सारथी का काम सीखा था, इसलिए मैं आपके रथ के घोड़ों को अच्छी तरह संभाल लूंगा। इसके पश्चात अर्जुन ने शुद्धतापूर्वक रथ पर पूर्वाभिमुख बैठकर एकाग्र चित्त से समस्त शस्त्रों का स्मरण किया। उन्होंने प्रकट होकर हाथ जोड़कर कहा, पांडुकुमार, आपके दास हम सब उपस्थित हैं। शस्त्र प्रकट हो गए। अर्जुन ने कहा, आओ अस्त्रों शस्त्रों तुम सब मेरे मन में निवास करो। इस प्रकार अस्त्रों को ग्रहण करके अर्जुन का चेहरा प्रसन्नता से खिल गया और उन्होंने गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसकी टंकार की। तब उत्तर ने कहा, पांडव श्रेष्ठ, कैसी आपकी ये टंकार है धनुष की, बाण तो कैसे ही निकलेंगे। पर एक बात है, आप तो अकेले ही हैं और इधर शस्त्रास्त्र के पारगामी अनेक अनेक मारथी हैं, आप इनसे कैसे युद्ध करेंगे। ये मन में मेरे भय हो रहा है, पहले मेरे लिए भय था, अब आपके लिए भय हो रहा है। ये सुनकर अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़े, कहने लगे, वीर डरो मत, बताओ कौरवों की घोष यात्रा के समय जब मैंने महाबली गंधर्वों से युद्ध किया था उस समय मेरा सहायक कौन था। अकेले ही थे हम। देवराज के लिए निवात कवच और पौलोम दैत्यों के साथ युद्ध करते समय मेरा कौन सहायक था। अकेले ही तो थे। द्रौपदी के स्वयंवर में जब मुझे अनेकों राजाओं का सामना करना पड़ा उस समय मेरी सहायता किसने की थी। मैं गुरुवर द्रोणाचार्य, इंद्र, कुबेर, यमराज, वरुण, अग्निदेव, कृपाचार्य, लक्ष्मीपति श्री कृष्ण और भगवान शंकर, इन सबका आश्रय पा चुका हूं। इनकी कृपा मेरे पर है। फिर भला इनसे युद्ध क्यों नहीं कर सकता? तुम इन मानसिक भयों को छोड़कर जल्दी से रथ को आगे बढ़ाओ। इस प्रकार उत्तर को अपना सारथी बनाकर पांडव प्रवर अर्जुन ने शमी वृक्ष की परिक्रमा की और फिर अपने सब अस्त्र शस्त्र लेकर अग्निदेव के समान चमचमाते हुए अग्निदेव के दिए हुए रथ का ध्यान किया। ध्यान करते ही आकाश से एक ध्वजा पताका से सुशोभित दिव्य रथ उतर गया। अर्जुन ने उसकी प्रदक्षिणा की और उस बानर के ध्वजा वाले रथ में बैठकर धनुष बाण धारण किए उत्तर की ओर प्रस्थान किया, उत्तर दिशा की ओर। फिर उन्होंने अपना महान शंख बजाया जिसके भीषण नाद से शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो गए। इधर राजकुमार उत्तर को भी बड़ा भय मालूम हुआ, वह रथ के भीतर के भाग में घुस करके बैठ गया और नीचे की तरफ बैठ गया ताकि कोई शस्त्र आए तो ऊपर से चले जाए और मैं कहीं दिखूं भी नहीं, एकदम छिप करके बैठ गया। हंसते हुए अर्जुन ने स्वयं ने घोड़ों की रास खींची और उत्तर को आश्वासन देते हुए कहा, राजपुत्र इतना डरते हो? रथ का संचालन भी नहीं कर सकते? तुम क्षत्रिय हो, शत्रुओं के बीच में जाते घबराते हो? मैं खड़ा हूं ना। उत्तर ने कहा, मैंने शंख और भैरियों के शब्द तो बहुत सुने और सेना की मोर्चे बंदी भी बहुत देखी है, हाथियों की चिंगार सुनने का भी मुझे कई बार अवसर मिला है। ऐसा शंख का शब्द मैंने पहले कभी नहीं सुना। इससे इस शंख के शब्द, धनुष की टंकार और ध्वजा में रहने वाले अमानुषी भूतों की हुंकार और रथ की घड़घड़ाहट से मेरा मन इन आवाजों से ही घबरा गया, इसलिए मैं छिप गया, रथ के अंदर छिप गया। इधर एक ही मुहूर्त में अर्जुन ही घोड़े को चलाते हुए आगे बढ़े और उत्तर से कहा, अब तुम रथ पर अच्छी तरह से बैठो, आगे आओ, अपनी टांगों से बैठने के स्थान को जकड़ लेना और रास को सावधानी से संभालो। अब मैं फिर दोबारा शंख बजाता हूं, अब मत डरना। अब अर्जुन ने ऐसी जोर से शंख ध्वनि की मानो पर्वत गुफा दिशा और चट्टानों को विदीर्ण कर देंगे। उससे भयभीत होकर उत्तर फिर रथ के भीतर घुसकर बैठ गया। उसने कहा, अर्जुन मेरे से ये शब्द सहन होता नहीं, मैं क्या करूं? मुझे तुम कायर कह दो, कुछ भी कह दो, मैं करूं क्या? रथ की घड़घड़ाहट से मैं तो घबरा गया। उत्तर ने कहा, अर्जुन ने कहा, उत्तर मैं तुमको धैर्य बनाऊं या शत्रु से युद्ध करूं? इस भीषण शब्द को सुनकर कौरव सेना में इधर द्रोणाचार्य ने कहा, ये तो इधर बातें हो रही थी अर्जुन के उत्तर की, उधर शंख की आवाज सुनकर के द्रोणाचार्य ने कहा, यह मेघ गर्जन के समान जो रथ की भीषण घरघराहट सुनाई दे रही है जिससे पृथ्वी में भी कंपन होने लगा है, इससे जान पड़ता है कि अर्जुन के सिवा कोई नहीं है। देखो अर्जुन के सामने रहते हुए हमारे शस्त्रों की कांति फीकी पड़ गई, हमारे घोड़े प्रसन्न नहीं है, अग्निहोत्रियों की अग्नियां भी प्रकाशहीन हो रही हैं, इससे जान पड़ता है कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। सभी योद्धाओं के मुख निस्तेज हो गए हैं, सबके मन में उदासी आ गई है, अतः हम गौओं को हस्तिनापुर की ओर भेजकर व्यूह रचना करके ही खड़े हो जाए। राजा दुर्योधन ने भीष्म द्रोण और महारथी कृपाचार्य से कहा, मैंने और कर्ण ने आचार्य चरण से यह बात कई बार कही है, फिर भी कहता हूं, पांडवों से हमारी यह बात ठहरी हुई थी कि जुए में हारने पर उन्हें 12 बरस तक वन में रहना पड़ेगा तथा 1 वर्ष किसी नगर या वन में अज्ञातवास करना पड़ेगा। अभी इनका 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है और यदि उसके पूरे होने से पहले ही अर्जुन हमारे सामने आ गया है तो पांडवों को 12 बरस तक फिर वन में रहना पड़ेगा। इस बात का निर्णय पितामह भीष्म आप स्वयं करें। इसके सिवा एक बात यह भी है कि इस रथ में बैठकर चाहे मत्स्यराज विराट ही आया हो, चाहे अर्जुन, हमें तो इनसे लड़ना है, ऐसी हमारी प्रतिज्ञा भी है। फिर ये भीष्म द्रोण कृपाचार्य विकर्ण अश्वत्थामा निरुत्साही होकर क्यों बैठे हैं, आपका बल कब काम आएगा। इस समय सभी महारथी घबराए हुए से दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है, क्यों घबराते हैं, यदि अर्जुन है तो लड़ते क्यों नहीं है, हमें तो लाभ है, 12 वर्ष वन में भेजने का मौका मिल गया, लेकिन अभी तो युद्ध के सिवा और कोई बात हमारे लिए हितकर भी नहीं है। आप अपने मन में उत्साह रखिए, यदि देवराज इंद्र और स्वयं यमराज भी संग्राम में हमारे सामने आ जाए और गोद छीनने लगे तो भी हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। हमको हस्तिनापुर लौट कर जाना चाहेगा, हमसे कोई गोदन छीन लेकर के और हस्तिनापुर लौट कर जाना चाहेगा। दुर्योधन की बात सुनकर कर्ण ने कहा, आप लोग आचार्य द्रोण को सेना के पीछे रखकर युद्ध की नीति का विधान करें। देखिए ना, अर्जुन को आते देखकर ये उनकी प्रशंसा करते हैं, इनके अंदर अर्जुन का प्रेम उमड़ता है, और अर्जुन निकट आएगा हमें लगता है ये अर्जुन को आशीर्वाद देने दौड़ पड़ेंगे, इनका तो अर्जुन में बड़ा प्रेम है, द्रोणाचार्य को सेना के पीछे रखो, इससे हमारी सेना पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक तरफ तो हम मरने आए हैं और दूसरी तरफ द्रोणाचार्य अर्जुन को आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, प्रेम से आंसू आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्या है ये, नीति से काम लेना चाहिए, हमारी सेना में फूट भी न पड़े। जिस समय ये अर्जुन के घोड़ों की हिनीनाद सुनेंगे उसी समय इनके घबराने से सारी सेना अव्यवस्थित हो जाएगी। ये द्रोणाचार्य की घबराहट है या शिष्य प्रेम है कुछ कहा नहीं जा सकता। दुर्योधन, नीति से काम लो, इस समय हम विदेश में हैं, बड़े भारी जंगल में पड़े हुए हैं, गर्मी की ऋतु है तथा शत्रु हमारे सिर पर आ चुके हैं, इसलिए ऐसी नीति का आश्रय लो जिससे हमारी सेना में घबराहट न हो। आचार्य तो दयालु बुद्धिमान और हिंसा से विरुद्ध विचरने वाले हैं, हिंसा से विरुद्ध विचार करने वाले हैं, जब कोई संकट आ पड़े तो इनसे किसी प्रकार की सलाह ही मत लो। पंडितों की शोभा तो मनोरम महलों में, सभाओं में, बगीचों में और चित्र विचित्र कथा सुनाने में ही है, अथवा बलि वैष्णोदेव आदि के द्वारा अन्न का संस्कार करने में तथा कीट आदि गिर जाने से उनके दूषित हो जाने पर भी पंडितों की सम्मति काम दे देती है। अतः शत्रु की प्रशंसा करने वाले इन पंडितों को पीछे की ओर रखकर ही नीति का आश्रय लो जिसे शत्रु का नाश हो जाए। सब गौओं को बीच में खड़ी कर लो, उनके चारों ओर व्यूह रचना कर दो तथा रक्षकों को नियुक्त करके रण क्षेत्र को संभालो जहां से कि हम शत्रुओं से युद्ध कर सकें। मैं पहले ही प्रतिज्ञा कर चुका हूं, उसके अनुसार आज संग्राम भूमि में अर्जुन को मारकर दुर्योधन का अक्षय रण चुका दूंगा। कौन बोल रहा है? कर्ण। कृपाचार्य ने कहा, कर्ण युद्ध के विषय में तुम्हारी बुद्धि सदाई बड़ी कड़ी रहती है, तुम न तो कार्य के स्वरूप पर ध्यान देते हो न उसके परिणाम पर विचार करते हो। विचार करने पर तो यही समझ में आता है कि हम लोग अर्जुन से लोहा लेने में समर्थ नहीं है। देखो उस समय तुम कहां चले गए थे, अकेले अर्जुन ने चित्रसेन गंधर्व के सेवकों को युद्ध करके परास्त किया था, सारे कौरवों की रक्षा की थी, वो अर्जुन ही था, अकेले अग्निदेव को तृप्त किया। जब किरात वेश में भगवान शंकर उसके सामने आए तो उसने अकेले ही युद्ध किया। निवात कवच और काल के दानवों को भी देवता भी नहीं दबा सकते थे, अर्जुन अकेले जाकर युद्ध किए। अर्जुन ने तो अकेले अनेकों राजाओं को अपने अधीन कर लिया। तुम ही बताओ, तुमने भी अकेले रहकर कभी कोई ऐसी करतूत दिखाई है क्या? अर्जुन के साथ युद्ध करने की सामर्थ्य तो इंद्र में भी नहीं है। तुम जो उसके साथ भिड़ने की बात कह रहे हो इससे मालूम होता है तुम्हारा मस्तिष्क ठिकाने पर नहीं है। इसको तुम्हें दवा लेनी चाहिए। हाँ, द्रोण, दुर्योधन, भीष्म, तुम, अश्वत्थामा और हम सब मिलकर अर्जुन का सामना करेंगे। तुम अकेले भिड़ने का साहस मत करना। इसके बाद अश्वत्थामा ने कहा, अभी तो हमने गवों को जीता भी नहीं है और न ही हम मत्स्यराज की सीमा पर ही पहुंचे हैं। हस्तिनापुर भी अभी बहुत दूर है, फिर तुम ऐसे बढ़ चढ़ कर क्यों बातें करते हो कर्ण? दुर्योधन तो बड़ा क्रूर और निर्लज्ज है, नहीं तो जुए में राज्य जीतकर भला किस क्षत्रिय को संतोष होगा। जुए में से जीता है, बाहुबल से तो नहीं जीता ना। आता है, जिस प्रकार तुमने जुआ खेला था, इंद्रप्रस्थ को जीता था, द्रौपदी को बलात् सभा में बुलाया था, उसी प्रकार अब अर्जुन के साथ संग्राम करके दिखाओ अपना बल। अरे काल, पवन, मृत्यु और बड़वानल जब कोप करते हैं तो कुछ न कुछ शेष छोड़ देते हैं, किंतु अर्जुन तो कुपित होने पर कुछ भी बाकी नहीं छोड़ेगा। क्या बात कही है, देखो, आग यदि कुपित हो जाए तो आग जड़ करके कुछ न कुछ तो पीछे रखेगी, राख वगैरह कुछ तो मिलेगा। जोर से वायु उड़े तो कोई चीज तो बाकी बचेगी। और काल है, वो जब काल का फंदा लगता है, कोई सब थोड़ी मरते हैं एक दिन में। अपन जिस दिन मरेंगे तो सारी दुनिया थोड़ी मर जाएगी, कोई तो बाकी रहता है। पर अर्जुन जिस समय कुपित हो जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। अतः जिस प्रकार तुमने युद्ध सभा में शकुनी की सलाह से जुआ खेला था, उसी प्रकार तुम बुलाओ अपने मामा जी को और कहो कि आओ, अब युद्ध में भी खेलने का कोई पासा बताओ और अर्जुन से युद्ध करो। अरे भाई, और कोई भी वीर युद्ध करे या न करे, मैं तो अर्जुन से नहीं लड़ूंगा, साफ बात बोल देता हूं। यदि गौवे लाने के लिए मत्स्यराज विराट आया तो उससे तो युद्ध कर सकता हूं, अर्जुन से युद्ध नहीं करूंगा। फिर भीष्म पितामह बोले, अश्वत्थामा और कृपाचार्य का विचार बहुत ठीक है, कर्ण तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने पर ही तुला हुआ है। किसी भी समझदार आदमी को आचार्य द्रोण पर दोष नहीं लगाना चाहिए, और जब अर्जुन हमारे सामने आ गया है तो आपस में विरोध करने का अवसर तो यह है ही नहीं, गले मिलने का अवसर है। आचार्य कृप, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा को भी इस समय क्षमा का बर्ताव करना चाहिए। बुद्धिमानों ने सेना से संबंध रखने वाले जितने दोष बताए, उनमें आपसी फूट सबसे बढ़कर दोष होता है। दुर्योधन ने कहा, आचार्य चरण, इस समय आप क्षमा करें, शांति रखें। यदि इस समय गुरुदेव के चित्त में कोई अंतर न आया, तभी हमारा आगे का काम बनेगा। तब कर्ण, भीष्म और कृपाचार्य के सहित दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से क्षमा करने की प्रार्थना मांगी, हमें क्षमा कर देना। थोड़े शांत होकर द्रोणाचार्य ने कहा, शांतुनंदन, भीष्म ने जो बात कही है, मैं तो उसे सुनकर ही प्रसन्न हो गया। अच्छा, अब युद्ध नीति का विधान करो। दुर्योधन को पांडवों के 13वें वर्ष के पूरे होने में संदेह है, किंतु ऐसा हुए बिना अर्जुन कभी हमारे सामने आता ही नहीं। कुछ ऐसा लगता है समय पूरा हुआ है तभी आया है। दुर्योधन ने इस विषय में बार बार शंका की है, अतः भीष्म जी इस विषय में ठीक निर्णय करके बताएं कि पांडवों के अज्ञातवास का समय पूरा हुआ या उसमें कोई समय बाकी है। इस पर पितामह भीष्म ने कहा, देखिए, आप लोग ध्यान से सुनिए, कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, नक्षत्र, ग्रह, ऋतु और संवत्सर, ये सब मिलाकर एक कालचक्र बना हुआ है। ये कालचक्र कला काष्ठादि के विभाग पूर्वक घूमता रहता है। उनमें सूर्य और चंद्रमा नक्षत्रों को लांग जा